وضاحت نجیناکم، نجات دینا، بچانا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون جیم واو. آل فرعون، آل، آل کا لفظ جو ہے یہ گھر والوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فالوئرز ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے کسی کو بھی کوئی فالو کرنے والے ہیں، ذہنی طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں اس میں. جیسے ہم کہتے ہیں آل نبی، تو ہاں جو بھی اس کے متعلقین ہیں. تو آل فرعون سے مراد جو ہے اس کے گھر والے بھی ہیں، اور ساتھ ہی جیسے اس کے جو درباری تھے، جو اس کے ساتھ اس کو اس کے احکامات کو جو فالو کرتے تھے، وہ بھی اس سے مراد ہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے نا اہل، الف ہا لام، وہ بھی والے کے لیے ہی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اہل نبی ہے نا، ہم یہ لفظ بھی بولتے ہیں اور آل نبی بھی بولتے ہیں. تو اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف گھر والے ہوتے ہیں، جیسے بیوی بچے وغیرہ. اہل مدینہ، جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں. اہل کتاب، ہاں اہل و عیال. تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ آل، ہے نا، آل فرعون، آل ابراہیم، آل عمران. تو یہ سب اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. فرعون، فرعون کا روٹ ہے فا را عین نون، فا را عین نون، فرعون. فرعون جو ہے یہ ایک نام ہے، اور اس سے مراد جو ہے کون ہے؟ اکفر الکافرین، کافروں میں سب سے زیادہ سخت انکار کرنے والا. فرعون جو تھا شاہان مصر کا مخصوص لقب تھا، جو مصر کے جو بادشاہ گزرے، جو بھی بادشاہ بنتا تھا نا، فرعون اس کا ایک خاص ٹائٹل تھا، اس کا نام فرعون ہوتا تھا. مگر قرآن نے جس فرعون کا ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا، جس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچے اس خطرے سے قتل کروا دیے کہ کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تخت جو ہے وہ الٹ دے گا، اس کی حکومت کو ختم کر دے گا. تو نجومیوں نے اس کی پھر اس کو یہی تعبیر بتائی تھی کہ، اور وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہ فرعون اور اس کے جو درباری تھے، انہوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. تو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ فرعون نے سارے جو بنی اسرائیل کے بچے تھے ان کو وہ قتل کرواتا تھا، اور بڑے ہی ظلم دے کر قتل کرواتا تھا، اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے اور کنیز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے زندہ رہنے دیتا تھا. یعنی کسی بھی قوم کی یہ بڑی ذلت ہوتی ہے کہ اس کے مرد جو ہیں ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے فتوحات میں، جنگوں میں بھی، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ لیا جائے. تو اب یہ کہ اس نے تو یہ تدبیر کی کہ کس طرح وہ اپنے تخت کو بچا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ وہ بچہ جس کو اللہ بچانا چاہتا تھا، تو اس نے فرعون کے گھر میں تربیت پائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے گھر میں اس نے پرورش پائی، اور اس کی پرورش کا سامان اللہ نے ایسے فراہم کیا کہ فرعون اپنے ہاتھوں سے خود اٹھا کر اس کو اپنے محل میں لے کر آیا. تو یہ کیا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کیسی ہے. اللہ کی جو کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کمزور کرنے کے لیے بھی لاکھوں جتن کیے، بڑی اس نے کوششیں کی، لیکن یہ کہ سارے کے سارے بیکار ہوئے. اور آخر کار آخری جو اس نے وار کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر فرعون سے چل پڑے تھے نا کہ آزادی دلائی جائے، تو اس وقت فرعون اور اس کے ساتھی نے لاؤ لشکر سمیت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو بنی اسرائیل کے ساتھی تھے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، اور پھر کیا ہوا कि अल्लाह ताला ने उसको समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया, समंदर की लहरों में वो डूब गया, वो और उसका सारा लौ लश्कर, और वो गर्क हो गया बहीरा कुलजम में। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी लाश अल्लाह की कुदरत से आज भी महफूज है, और इसका फिरौन का जो अहद हुकूमत है अंदाजन कहते हैं 1,500 साल कबल मसीह है, 1,500 साल कबल मसीह। तो इसके बाद जो है क्या है, यसूमूनकुम, यसूमूना इसका रूट वर्ड है सीन वाओ मीम, इसके लफ्जी मानी है तकलीफ देना, मुब्तिला करना, और ऐसी तकलीफ जिसमें जिल्लत और खारी हो। एक होती है ना किसी को तकलीफ देना, तो दे दी उसको दर्द हुआ, एक ऐसी तकलीफ होती है कि जिसमें वो जलील हो, जिसमें वो लोग रुसवा हो। और ये जिल्लत ही थी ना कि औरतों को जिंदा रखता था और मर्दों को कत्ल करता था। तो ये है सीन वो मीन, तकलीफ देना, जिल्लत देना, किसी को जुल्म का मजा चिखाना, सुआ, यही इसका रूट है सीन वो हमजा। ये ना बदसूरती को कहते हैं, बुरी चीज को कहते हैं, हर वो चीज जो अकल के एतबार से पूरी बुरी हो और शरीयत के लिहाज से भी बुरी हो, जाहिरी तौर पर बुरी हो और मानवी लिहाज से भी बुरी हो। जैसे किसी की शक्ल है, देखने में भी बुरी है और उसके अमल भी बुरे हैं, यानी हर लिहाज से वो बुरी है, तो उसके लिए जो है कहते हैं। तो आप हम इसको यूं याद रख सकते हैं कि सू इसी से सैयात है, बुराइयों को कहते हैं, सूउल आमाल, बुरे आमाल। इसी से जो है वो जैसे लाश नहीं होती, लाश सीन वो हमजा ता लाश ऐसे पड़ी हुई है, तो वे गोरो कफन तो बुरी लगती है देखने में ना, अच्छी तो नहीं लगती ना ऐसा देखना उसका। इसी तरह शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट जो है उसको भी सवा, सीन वो हमजा ता जो है उसको भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये है सू अल अजाब, ये आप पहले पढ़ चुकी हैं, इसका रूट वर्ड क्या है, आयन जालबा, डरा ना करे बोला करे, युजब्बेहूना जालबा हा, जिबा करना, हिवान के हलक को काट देना, हलक से किसी को यहां से गर्दन के पास से काटना, तो किसी को भी गर्दन के पास से काट दे। वैसे तो आमतौर पे हिवान को जिबा किया जाता है, लेकिन अब इंसान का खून चूंकि बहुत सस्ता है तो अब इंसानों को भी ऐसे जिबा किया जाता है जैसे कि जानवर को जिबा किया जाना चाहिए था, है ना। और युजब्बेहून अब शद है इसके ऊपर, और मैंने आपको कहा था पहले ही कि जब शद आएगी तो अभी मानी के अंदर जो है वो इजाफा होगा। तो युजब्बेहूना का मानी है कि एहतमाम के साथ तकलीफ देकर जिबा करना, ठीक है, एहतमाम के साथ तकलीफ देकर जिबा करना। अपना अकुम, अबना या पढ़ चुकी हैं, क्या रूट वर्ड है, हाँ यानी इसका हमने वाहिद पढ़ा था ना इब्न, और यही बनून बनीन या बनी ये वो या बना बेटों को कहते हैं, जमा है ये। यस्ताहयूना हा या, ये आपने पहले भी पढ़ा है ना, पहले कैसे पढ़ा था, हाँ युहयीकुम कि वो तुम्हें जिंदा करता है, वो जिंदा करेगा। और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि ला यस्ताही कि वो नहीं शर्माता, तो असल में शर्माने का रूट वर्ड भी हा या है और इसका भी। तो बाज़ औक़ात एक ही रूट वर्ड से जो है वो दो मुख्तलिफ मानी देने वाले जो है मादे बन जाते हैं, ठीक है, दो मुख्तलिफ मानी देने वाले मजदर बन जाते हैं। तो हा या शर्माना भी है, हया है इसे, हया करें बेहया ना हो जाए, है ना। और उसी तरह दूसरा क्या है कि जिंदा करना, हयात। निसा अकुम नून सीन वो, बीवी को भी कहते हैं, औरत को भी कहती हैं, छोटी औरत है बड़ी औरत है, हर उम्र की औरत के लिए निसा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बला उन, बला रूट वर्ड क्या है इसका, बालाम या, बालाम या इसके मानी है किसी का पुराना होना, बोसीदा होना। अच्छा अगर कपड़ा ही देख ले हम, कपड़ा पुराना कब होता है, जब कपड़ा पहन पहन कर धो धो के इस्त्री कर कर के कूट कूट के जब इस्तेमाल करते हैं तो पुराना हो जाता है, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है बलोनी, दूध देने, दूध जो है वो दूध से जब आप दही बनाते हैं, दही में से जब आप मक्खन निकालते हैं तो दूध को बुलोते हैं, बलोनी मदानी को भी कहते हैं। कि जब दूध को आजमाइश में से गुजारा, खूब उसको पंजाबी में कहते हैं रिड़का, तो फिर क्या होता है, यानी वो जब दूध आजमाइश में से गुजरता है बलोनी में से, तो फिर जो है वो दूध में से मक्खन निकलता है। तो ये एक बला है, यानी बला में से गुजरा, मुसीबत में से गुजरा, आजमाइश इम्तहान में से गुजरा। गम को भी बला कहते हैं, क्योंकि गम भी जिस्म को लागर कर देता है, कमजोर कर देता है, जिस्म को खूब वो भी बुलोता है। तो ठीक है, हम ये कहते हैं ये क्या बला है, ये क्या मुसीबत है। आप उर्दू में भी इसका इस्तेमाल करती हैं। फरकना, फारा का फरक, इसका मानी है किसी चीज को फाड़ कर अलग कर देना, एक हिस्सों में या ज्यादा हिस्सों में। इसी तरह फिरका, हम कहते हैं ना एक फिरका बन गया, तो वो जो किसी जमात से अलग हो जाता है, ठीक है, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम जो है वो उसके इसको यूं भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फुरकान, हक और बातिल में फर्क करने वाला, इसी से फारूक है ना। ये किसका टाइटल था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो का, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनकी वजह से मक्का की गलियों में कलमा तौहीद गूंज उठा, मुसलमानों में एक जुर्रत पैदा हुई, मुसलमान दारे अरकम से बाहर निकल आए, तो आपको फारूक का लकब दिया गया। तो इसका जैसे जाहिरी तौर पर किसी चीज में फर्क करना और मानवी लिहाज से, दोनों तरह इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बहर, बहर जो है ये समंदर को कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर जहां पानी हो ना, उसके लिए बहर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी का बहुत बड़ा जखीरा जहां जमा हो जाए और हर तरफ से पानी आकर उसके अंदर गिरे। दरिया को नहीं कहते, बल्कि किसको कहते हैं, समंदर को कहते हैं। इसी तरह जो फिर और पानी होता है थोड़ा, उसको जोहड़ कहते हैं, है ना। इसी तरह झील होती है, इसी तरह बहीरा, तो ये भी छोटे से समंदर को बहीरा कहते हैं। बाहर बहुत बड़ा समंदर, बहीरा छोटा समंदर। तो मुख्तलिफ जगह ये लफ्ज इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वह अगरकना, गरा का गैन रा काफ, इसके मानी है डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना। तंजुरून, नजारा, नजर के लफ्जी मानी है देखना। आप सुनती होंगी ना, रेडियो टीवी देखती होंगी, तो जो सुनने वाले होते हैं उनको कहते हैं सामईन, और जो देख रहे होते हैं उनको कहते हैं नाजरीन। नाजरीन कौन, जो देख रहे होते हैं, इसी से नजर है, इसी से नजारा। सीन को भी हम कहते हैं नजारा बड़ा खूबसूरत था, नजारा बड़ा दिल फरेब था। फिर इसके बाद है वादना, या पढ़ ही चुकी हैं, मूसा, यही इसका रूट वर्ड है, मीम वो और सीन और या। मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, ये पहले रसूल हैं जिन्हें मुस्तकिल शरीयत अता हुई, ये अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं, इन्हें किताब दी गई, ये बड़े साहिबे जलाल थे। आपकी पदाइश और आपकी तरबियत मौजजाना तौर पर हुई, और उन दिनों हुई जब फिरौने मिस्र बनी इसराइल के पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करा देता था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहदे बादशाहत में मिस्र में आकर आबाद हुए थे, अब लाखों की तादाद तक पहुंच चुके थे, है ना, और वहां पे गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। कहां से आकर ये आबाद हुए थे, मिस्र में तो आबाद हुए थे, कनान के इलाके से, फिलिस्तीन शाम का जो इलाका था वहां से आकर ये मिस्र में आबाद हुए थे। कब आबाद हुए थे? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहां पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम हुकूमत कर रहे थे, है ना। तो ये वहां पे कहत पड़ा हुआ था, तो फिर ये अपने माँ बाप वालदैन भाइयों को लेकर वहां पर आ गए थे, ठीक है। अब वहां पर गुलामी की जिंदगी बनी इसराइल के लोग गुजार रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का असल मिशन क्या था कि इन्हें फिरौन मिस्र की गुलामी से आजाद करके वापस इनके वतन फिलिस्तीन तक पहुंचाया जाए, वापस इन्हें फिलिस्तीन ले जाया जाए और इस इलाके में वो हाकिमाना हैसियत से आबाद हों। मगर सदियों की गुलामी ने बनी इसराइल को बड़ा गुलाम बना दिया था, बड़ा बुजदिल बना दिया था, बहुत डरपोक बन गए थे। और वो इतना डरते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको समझाते थे तो उनसे उलझ पड़ते थे। फिरौन के मजालिम को बर्दाश्त करना उनकी आदत बन गई थी। और चूंकि अहले मिस्र गाय की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे, तो बनी इसराइल भी क्योंकि हकूमत जिन लोगों की हो, जो रूल करने वाले लोग हो ना, तो जो गुलाम कौम होती है ना, जो फॉलोअर्स में लोग होते हैं, हाँ उनका मिशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनका रिलीजन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो वो क्या करते हैं कि वो जो हाकिम लोग होते हैं उनको, उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं। उनका लिबास, उनका जो भी सिस्टम होता है, उनका जो रिलीजन होता है। तो अब ये बनी इसराइल के लोग जो थे ये वहीं पे क्योंकि रहते थे, तो मिस्र की जो बातें थी, जो उनकी गाय की पूजा थी, वो इनमें भी रच बस गई। फिर आखिर अल्लाह ताला ने फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी और जो भी आले फिरौन थे उनको समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया, उनको उसमें गर्क कर दिया। अब अगला मरहला क्या था बनी इसराइल के लिए कि वो जिहाद करके, जो उनका अपना इलाका था ना शाम और फिलिस्तीन का, अब उस पर भी कोई कब्जा कौम कर चुकी थी, अब उसको उन्होंने दोबारा से उस पर कब्जा करना था। अब ये कौम के अंदर बुजदिली बहुत आ चुकी थी क्योंकि गुलामाना जहनियत, जब कोई कौम गुलाम होती है और नस्लों दर नस्ल गुलाम होती है, सदियां गुलाम होती है, तो वो हर चीज में गुलामी इख्तियार करती है। वो ना तो सोच गुलाम हो जाती है, गुफ्तार गुलाम हो जाती है, किरदार गुलाम हो जाते हैं, तो वो जो है वो तौस और रुबाब आखिर, है ना। तो फिर वो क्या है कि वो यही सोचती है कि मौसीकी और गाना बजाना ही उसके मसाइल का हल है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इनसे ये कहा कि अब तुमने जाकर फिलिस्तीन पर कब्जा करना है, और ये जिहाद से इनकार कर रहे थे, डरते थे, है ना, कहते थे। एक जगह कुरान में आता है बनी इसराइल के लोगों ने कहा فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هَاهُنَا قَائِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے اب جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے، هَاهُنَا قَائِدُونَ، بس یہ لیکو، یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے، ہاں یہ بیٹھے، قائدون قادے میں جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے بس۔ تو اب کیا ہے کہ صاف صاف جہاد سے انکار کیا۔ اب یہ مصر سے نکل چکے تھے، وہاں پہ ایک میدان تھا تیا کا میدان، تا یا اور ہا ساتھ ملا دیجئے، ہائے مربوطہ۔ تو 40 سال تک یہ اس میں بھٹکتے رہے، اور اس وقت آپ کے معاون کون تھے، آپ کے ہیلپر کون تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے یہ بڑے بھائی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی ارد تیا میں، اسی میدان میں دونوں بھائیوں کی وفات ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی۔ اور وفات سے پہلے انہوں نے یوشا کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، یہی وہ یوشا ہیں جن کی خضر علیہ السلام سے، خضر سے ملاقات کے دوران یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے سفر میں کہ لاؤ ہماری مچھلی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عجیب طریقے سے سرابا اندر ہی چلی گئی تھی۔ اچھا، ان کی قیادت میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مصر کا جو علاقہ تھا بنو اسرائیل نے اس کو پھر فتح کر لیا، اس پر انہوں نے قبضہ کیا، اور 40 سال کی جنگل کی بامشقت زندگی، پھر دراصل جب 40 سال جنگل میں رہے، آپ سوچیں کہ جو وہ قوم جو پہاڑوں پہ رہتی ہو یا میدانوں میں رہتی ہو، کھلی فضاؤں میں رہتی ہو، کچھ بھی، وہ بڑی سخت اور جفا کش قوم ہوتی ہے۔ آپ افغانستان کے پٹھانوں کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کی پہاڑوں پہ رہنے والے مسلمانوں کو دیکھ لیں، وہ بڑے بہادر ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کو تو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، تو پھر ہم، وہ کوئی کہہ رہا تھا پچھلے دن جو بڑی سخت سردی تھی کہ -30 تھا کہ 25 تھا، تو لوگ، یہ لوگ تو وہ بھی بہت کرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے کہ بہت یہ وہ، بہرحال میں یہ نہیں کہتی نہیں ہے، وہ کہ یعنی باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اسکن ڈیزیز ہو جائے گی، اور सख्त किस्म की कोई बीमारी लग जाएगी, और फिर बाज औकात फिर लोग जो है ना, लेकिन आप देखें मतलब डरते हैं और इंतजाम करते हैं बहुत सा, लेकिन पहाड़ों पे रहने वाले आप देखें वहां पे ना कोई हीटिंग का इंतजाम होता है, और पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, बाहर निकले तो हर तरफ बर्फ होती है, समंदर खुला हुआ है, खुला आसमान है, और फिर वो लोग मतलब उनके अंदर ज्यादा वो होती है, हाँ, कुव्वत है बर्दाश्त और स्ट्रगल की कुव्वत भी। तो 40 साल जब मैदान में ये रहे ना, कहते हैं एक कौम एक नस्ल इनकी खत्म होगी, जो दूसरी नस्ल मैदान में पल बढ़कर जवान हुई, फिर उसने जाकर जिहाद किया और उनको फिर फतह हुई, और इनकी गुलामी पर जो इनका मुतमिन होना था, ये इनका इलाज था कि इनको मैदान में लाकर छोड़ दिया जाए। तो ये थी जो जरूरतमंद कौम जिसने जिहाद करके दोबारा अपना इलाका जो था वो वापिस लिया। तो यहां से अब आप देखें कि यही हमने पढ़ा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे। अरबईना इसका रूट है राबाइन, रुबा चौथाई को कहते हैं, है ना, अरबा चार को कहते हैं, सिपारे के भी आप इसे करते हैं ना, आप कहते हैं रुबा है, फिर निस है, फिर सिलासा है, और फिर पूरा पारा है ना, तो रुबा उसका 1/4 होता है। वाहिद इस्नैन सलासा अरबा, अरबा किसको कहते हैं,
चार
चार को कहते हैं, हाँ 4 को कहते हैं अरबा, ठीक है। तो अरबाइन ये जो है 40 को, 40 को कहते हैं, अरबाउन अरबाइन, ठीक है, 40 को कहते हैं। लैलतन रात के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इत्तखज़्तुम अखज़ा, अलिफ खाज़ाल ये वर्ब है, पकड़ लेना अखज कर लेना। अल-इजला, इजल जो है ये बछड़े को कहते हैं, गाय का जो बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, जैसे एक माह का छोटा सा बच्चा जो होता है गाय का, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसको इजिल क्यों कहते हैं, इजिल जल्दी जल्दी के लिए लफ्ज, उजलत, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि आई एम इन हरी, यानी मैं बहुत जल्दी में हूं, तो मैं उजलत में हूं। ये गाय का जो बच्चा होता है ना, जल्दी जल्दी भागकर अम्मी का दूध पीना चाहता है, इसमें तेजी होती है, फुर्ती होती है, अभी मोटा नहीं होता। तो जब तक वो बैल की उम्र को पहुंचता है ना, तो गाय के बच्चे में वो उजलत नहीं रहती, तो फिर इसका नाम भी इजल नहीं रहता, चेंज हो जाता है। तो किसी चीज को वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करना, उसके लिए आता है ऐन जीम लाम, इजल। अब आप देखें कि गाय के जो थन होते हैं ना, उसमें बाज़ औक़ात कपड़ा बांध दिया जाता है हर वक्त, वो वेरी वो उसको अगर बच्चे को बांधना है ना, छूटता है और दूर तक जाता है बच्चा, बहरहाल इजिल। अफाउना, अफाउना यही इसका रूट वर्ड है, आइन फावो, किसी से बदला लेने से हट जाना। आप उर्दू में भी बोलती हैं अफो दरगुजर, जो ऐसा शख्स जिसने गलत काम किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, वो सजा का मुस्तहिक था, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने अफू से काम लिया, कसूर का बदला ना लेना, खा कसूर छोटा हो या बड़ा हो। तशकुरून शकरा, एक तो शक्कर होती है ना जो हम खाते हैं, शुगर, वो भी अच्छी होती है, पर ये शुक्र भी बड़ा अच्छा होता है, बड़े खूबसूरत है इसके मानी, और काश के जो है ना ये हमारे अंदर आ जाए। शकारा इसके मानी है उमड़ आना, भर जाना, आंख में आंसू जब भर जाता है ना, तो खुद ब खुद बह निकलता है, उसके लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। और इसके अलावा जैसे उसके लिए कैसे कहते हैं, आयनुन शकरा, ऐसी आंख जो अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की नेमतों का तसव्वुर करके फिर बहने लगे, आंखों में आंसू आ जाए और फिर बहने लगे, आयनुन शकरा। इसी तरह अरबी जबान में ऐसी घास के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है, जो ऐसी घास, उसका नाम है बरूक, बारा वोकाफ, बरूक ऐसी घास है, ज्यादा बारिश भी ना हो, ज्यादा पानी भी ना दे, पानी के चंद छींटे ही मिल जाए उसको, फलती फूलती है, बढ़ती है, हर तरफ फैल जाती है। अरबी में मुहावरा है, हुआ अशकरु मिन बुरूक, हुआ अश करू मिन बुरूक, वो बुरूक घाय से भी, वो बुरूक घास से भी ज्यादा शुक्रगुजार है। वो शख्स जो है बुरूक घास से भी ज्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि बुरूक घास को थोड़ा सा पानी मिला तो बहुत बड़ी बड़ी और फली फूली, और उस इंसान, वो इंसान के पास जो भी थोड़ा बहुत है उसके अंदर इतनी कनात है कि वो जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो ये बहुत ही मुझे इसके मानी अच्छे लगते हैं कि जिस तरह हल्की सी बारिश से बरूक घास जो है वो हरी भरी हो जाती है, जिस तरह गाय जो है उसको उसका मालिक जैसा भी खाना देता है रूखा सूखा, तो वो क्या करती है कि उसके जब टाइम होता है ना दूध का, दूध उसके थनों में भर जाता है और भर कर फिर बहने लगता है। तो दूध से भरे हुए थनों वाली ऊंटनी के लिए भी अरब लोग बोलते थे नाकतुन शाकिरा, शुक्रगुजार ऊंटनी। तो ये है सोचने वाली बात कि मेरा ही ना सबूर दिल शुक्र बजा न ला सका, तेरी ताआतों में, तेरी अताआतों में तो कमी हुई ही नहीं। शकरा अल फुरकान, बढ़ चुके इसका रूट वर्ड क्या है, फारा काफ, ताहतदून हा दालिया, काला कौल से है, कौम ही कौम, वित्तिखाजिकुम अखज है ना, पढ़ चुकी हैं आप, अल इजला, फतूबू, तूबू का रूट वर्ड क्या है, पढ़ चुकी हैं आप, तौब, शाबाश, पलटाना लौटाना, खैरुन, खैरुन जो है ये इसम तफजील है। अच्छा, खैरुन इसम तफजील है और इसके मानी क्या है, बहुत अच्छा, बेस्ट। इसम तफजील ता फा दाद या लाम, तफदील यानी कोई चीज, जैसे आप किसी चीज को कहती हैं कि ये चीज जो है ये क्या है कि बेटर है, गुड है, बेटर है और बेस्ट है ना, गुड बेटर और बेस्ट, ये बेस्ट है, हाँ, हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसके लिए लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है खैरुन। और भी आएंगे बीच बीच में, तो यहाँ पे ये है। आगे आ रहा है इंदा के बाद बारीकुम, बारीकुम पीछे भी आया, फतूबू इला बारीकुम है ना, तो ये इसके इसका रूट वर्ड क्या है, बारा हमजा, इसके मानी है क्रिएशन यानी खलकत, खैरुल बरिया है ना, शर्रुल बरिया कहाँ है, कौन सी सूरत में, सूरतुल अलबैना, लम यकुनिल्लज़ीना, सही। अच्छा, तो ये है बरिया, हर तरह की मखलूक के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे आप देखें तो आम तौर पे भी यानी पैदा करना, तो उसके लिए खला का भी है। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा, बारा हमजा, तो पैदा करने में और इसमें जो है फिर क्या फर्क है, तो अगर हम कुरान को देखते हैं तो कुरान में हमें पैदा करने के लिए भी बहुत से अल्फाज, या किसी चीज को वजूद में लाना उसके लिए हमें बहुत से अल्फाज जो है वो मिलते हैं। जैसे बरा के मानी है किसी चीज चीज को अदम से वजूद में लाना, किसी चीज को बगैर मादा के अदम से वजूद में लाना, यानी वो चीज थी ही नहीं तो उसको जो है वो वजूद में लाया गया, पैदा किया गया, ये है लफ्ज। और एक है बदा, बादाल हमजा, बादाल आयन, बादाल आयन इसका मतलब है पहली बार बनाना, किसी नमूने के बगैर बनाना। हम कुरान में पढ़ते हैं ना बदी उस समावाती वल अर्द, इसी तरह या फातिर असमावाती वल अर्द है ना, फातिर फतारा से है, तराश खराश करके खूबसूरत पैदा करना, और खलका ये लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है। किसी चीज को बनाने के लिए उसका खाका बनाना, फ्रेम बनाना, किसी चीज को का अंदाजा लगाना, एक चीज से दूसरी चीज बनाना, पहले से मादा मौजूद है अब उससे दूसरी चीज जो है बनाई जा रही है। तो खलका का लफ्ज जो है ऐसी चीज बनाना जिसका पहले से मवाद मौजूद है, तखलीक करना। ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज है जरा, इसका मतलब होता है पैदा करना, फैला देना। जाल, रा और हमजा, जरा। इसी तरह के अनशा, अनशा जो है इसके मानी है पैदा करना और नशो नुमा देना। वहुवल्लज़ी अनशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अनशा पैदा करना फिर उसको नशो नुमा देना। तो पैदा करने के लिए जो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, एक है बरा, अदम से वजूद में लाना, उसका कोई मवाद नहीं था, मेटीरियल नहीं था, तो बिल्कुल स्टार्ट से उसको बनाया। दूसरा है बदा, पहली दफा बनाना लेकिन नमूने और किसी भी नकल के बगैर बनाना, अनोखी चीज बनाना। बदिया यानी अनोखी चीज, बाज लोग नाम भी रखते हैं। फतरा, खूब उसको घड़कर, तराश खराश के, नोक पलक उसकी बना के बनाना। चौथा है खलाका, कई मानी में इस्तेमाल होता है। पांचवा है अनशा, पालना पोसना, पैदा करना, नशो नुमा देना। और छठा है जरा, फैला देना, पैदा करके फैला देना। तो ये बारेकुम, अगर तौबा का लफ्ज आए इंसान के लिए तो तौबा करना, और अगर आए अल्लाह ताला के लिए और उसके बाद अला की प्रेपोजिशन भी हो तो उसका मतलब है मुतवज्जो होना, अल्लाह का तौबा कबूल करना। फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। तवाब भी उसी से है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले, मेहरबान होना। सही। फिर इसके बाद है नरा, नरा जो है इसके मानी है देखना, रआ। नरा हम देखते हैं, अरा मैं देखता हूं या मैं देखती हूं, जहरतन, जीम हारा, जहर, इसके मानी है कोई भी चीज जो है जो वाजे हो, जहरी होना, जो चीज अलल ऐलान हो। आप देखें नमाजें भी दो तरह की होती हैं, एक जहरी होती है, एक सिर्री होती है ना। जहरी नमाज में क्या करते हैं इमाम के ऊंची आवाज में किरात करते हैं, न सुनती आवाज, है ना। सिर्री नमाजों में इमाम साहब सिर्फ तकबीरें तो पढ़ते हैं लेकिन ऊंची आवाज में किरात नहीं करते, कहते उनको सिर्री नमाजें कहते हैं। तो सिर्री नमाजें हैं जोहर की नमाज और असर की नमाज, जहरी नमाजें हैं फजर, मगरिब और इशा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि एक दफा इमाम साहब, कोई आदमी था नमाज पढ़ा रहा था, तो और एक लोग उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे और असर की नमाज का टाइम था और उन्होंने किरात जो थी वो जारी करनी शुरू कर दी। अब पीछे जो मुक्तदी थे उनमें से एक मुक्तदी बार बार कह रहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो वो तिलावत करते जा रहे थे। तो उसने रुख मोड़ के ना पीछे कहा कि मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलती क्या कर रहा हूँ, क्या सुभान अल्लाह कहते जा रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं गलती क्या कर रहा हूँ। समझ आई बात की आपको? तो बाज औकात ये सिरी जारी की गलती समझ में ही नहीं आती। साइका या पढ़ चुकी है, गिरने वाली बिजली, गरज वगैरह के साथ जो है। बास नाकुम, बा ऐसा इसके मानी है उठाना, यानी रसूल के लिए आया ना, मबूस किया, खड़ा किया। जल्लना, जोए लाम लाम, साय के लिए भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसी से खैमा जो होता है ना, खैमा ये जो हम लगाते हैं कनाते वगैरह शादी वगैरह के मौके पर, जो ऊपर अपने, हाँ टेंट, उसके लिए भी जुल्ला अरबी जबान में इस्तेमाल होता है, सायबान यानी छतरी के लिए, है ना। इसी तरह जिल्ले सुबहानी, ये बादशाहों के लिए भी, के बादशाह का साया कायम रहे, है ना, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। गमामा, गमाम जो है गैन मीम मीम, घमाम बादिल को कहते हैं, इसका मतलब है ढांक लेना। वो बादिल जो तय दर तय होकर इतना गाढ़ा हो जाए, लेयर पे लेयर, तय दर तय होकर इतना गाढ़ा हो जाए कि सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोक दे। घमाम, क्योंकि आसमान पर जब बादल आते हैं ना तो सूरज को छुपा देते हैं, कभी आसमान को छुपा देते हैं, है ना। अच्छा, इसी तरह इंसान को गम लगता है तो गम जो है ना वो दिल पर आ जाता है ना। आप कहते हैं कि खाना पड़े, आप कहते हैं कि दिल नहीं करता भाई। अब दिल जो है ना वो गम के अंदर है, दिल की एक है ना एक ताजगी सी, एक तरावत, एक शगुफ्तगी, तो गम ने जो है वो ले ली। तो गम का फिर मतलब लफ्जी क्या है, कवर कर लेना, ढांक लेना। तो अब यहाँ पे कनाडा की बात हो या अमेरिका की, यहाँ पे जो है ना डिप्रेशन एक नई बीमारी है और बड़ी कसरत से है। और अच्छा भला इंसान जो है ना वो, उसको कोई असल में मसला होता है, परेशानी है कोई, हो सकता है किसी को जॉब की हो, किसी को औलाद पैदा हो गई है तो उसकी है, जिसकी औलाद नहीं है उसकी भी, उसको भी एक है। यानी जिसके पास औलाद नहीं है वो भी गमजदा है और जिसके पास है वो भी गमजदा है। लोग ना परेशानियों में हैं, घर है तो परेशान है कि अच्छा ये अब क्या, हमने व्हाइट एलिफेंट पाल लिया, इसको अदायगी कैसे करें, वो सूद और परसेंटेज, और जिसके पास नहीं है वो कहते हैं कब व्हाइट एलिफेंट लेना है हमने भी, है ना। तो इसी तरह जिसके पास है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। और ये पिछले दिनों एक किसी का मसला हमारे सामने आया कि औलाद नहीं है लेकिन ये कि लड़ाई बहुत है घर में मियां बीवी की, तो लाखों डॉलर। और अब उसने, मैं ये कह रही थी कि जॉब ना हो तो कहते हैं घर में पैसे नहीं है तो लड़ाई होती है, बच्चे खाएं कहां से। अब बच्चे नहीं है और पैसे भी हैं तो अब क्यों लड़ाई है, अब लड़ाई है दोनों में, वो तो कितने पैसे हैं कि वो जाएं कहां, उस पर लड़ाई है ना। तो गम बहुत है जो हमें कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन की बीमारी के तौर पे जो दवाइयां दी जाती हैं वो सिवाय नशे के और कुछ नहीं है, और साथ साथ नशा वो बढ़ता जाता है, और हम कहते हैं रिलैक्स फील होंगे और सो जाएंगे, है ना। तो जो लोग ईमान लाने वाले हैं ना उनको कोई गम नहीं होना चाहिए, है ना। गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे जावेदा गमे दो जहां, मेरी हर नजर तेरी मुंतजर तेरी हर नजर मेरा इंतहा, है ना। तो हमारी तो जिंदगी का एक ही गम है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। किसी को औलाद दी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको आजमाया है, कि अल्लाह ताला ने उसको एक आजमाइश में डाला, उसको खाली पेपर दे दिए, बच्चे एक खाली पेपर है, अब वो उन खाली पेपर पर क्या लिखता है। लेकिन उस गम को इतना नहीं लगा लेना चाहिए कि बंदगी के गम से निकल जाए, हदूद के अंदर रह के, और जो भी जो कर सकते हैं इंसान होने के नाते बेस्ट कोशिश करनी चाहिए कि आई ट्राई माई बेस्ट, है ना। और जिसके पास नहीं है तो अल्लाह ने उसको उस आजमाइश में डाला ही नहीं, और अल्लाह अपने बंदों को आजमाता तो है ना, किसी को दे के किसी को ना दे के। तो फिर किस चीज का गम कि तूने मेरे लिए इस चीज को पसंद ही नहीं किया तो मैं तेरे क्यों ना शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाऊं, है ना। तो किसी को अल्लाह दौलत दे के आजमाता है, किसी को महरूम करके आजमाता है, किसी को हुसन दे के आजमाता है, किसी को जो है हुसन नहीं देता और आजमाता है, और देख चाहता है ये देखना कि मैं और आप करते क्या हैं। तो ये जो कुछ भी बात है ना, किसी कोई बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत अमीर है, किसी के पास गाड़ियां हैं, किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, होना या ना होना कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। असल चीज क्या है जिसका मुझे और आपको गम होना चाहिए, वो ये कि अल्लाह ताला की बंदगी में ये जितनी सांसें हैं ना, और जितने जिंदगी के दिन हैं, और जितनी रातें हैं, जितनी जवानियां हैं, और जितना बुढ़ापा है, और जो कुछ भी मेरे और आपके पास है ना, बस वो उसके अंदर जो है ना गर्क हो जाए और उसमें हम डूब जाएं, और उसी में मेरे और आपकी जिंदगी के दिन गुजर जाएं। तो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी आजमाइशें आएंगी, गुजर जाएंगी, एहसास भी नहीं होगा कि कोई आजमाइश आई है ना। तेरा कर्म के चुना है इम्तहान के लिए, है ना। अल्लाह अपने प्यारों को आजमाइशों में डाला ही करता है, और सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया पर आई, तो उनको तो कोई नहीं डिप्रेशन हुआ, वो तो कोई नहीं परेशान हुए, कुछ भी नहीं था कि कहा जाओ फिरौन के दरबार में। रसूल अल्लाह सल्लम से कहा जाओ मक्का वालों से अब टक्कर लो, ताइफ का सफर, मदीना का सफर, गजवात। और आज छोटी 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 बातों पे डिप्रेशन, जवान जवान है और इतनी डिग्रियां हैं और उसके बाद डिप्रेशन। तो ये सारी शैतानियत है, ये मायूसी जो है ना ये शैतान की वजह से आती है, वो हमें मायूस करता है और वसवसे देता है और हम परेशान होते हैं। ला तक न तू मिन रहमत इल्ला, तो गमाम गम, एक ही गम होना चाहिए। मन्ना, मन मीम नून नून एहसान के लिए आता है, एहसान करना, किसी को जो है बड़ी भलाई देना, किसी पर फजल करना, बड़े एहसान के लिए आता है ना। हदीसे जिब्राइल आपको आती है, उसने बताया ये लफ्ज आया कि नहीं हदीसे जिब्राइल में? हाँ आप बिल्कुल,
अल्लाह ताला आपको देख रहे नहीं तो आप पहले ये कि नमाज इस तरह पढ़ो कि आप अल्लाह ताला को देख रहे, और अगर नहीं एक भी दिन नहीं रख सकते तो ऐसी नमाज हो कि अल्लाह ताला आपको देख।
सही बात है। तो हमें जो है यानी एक हदीसे जिब्राइल है जो बड़ी मशहूर है, आपने पहले भी पढ़ी है और इंशाल्लाह मौका मिला तो आप जो हैं वो फिर पढ़ेंगे। तो उससे हमें वहां पे ये बात पता चलती है कि एहसान जो है वो क्या है, कि इस तरह नमाज पढ़ी जाए कि हम जो है वो अल्लाह को देख रहे हैं, ये एहसान का आला दर्जा है। और वरना कम से कम दर्जा क्या है कि ऐसे नमाज पढ़ी जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह की नजरों में है, तो ये भी हमें जो है वो पता चलता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो नबियों को हमारे पास भेजा या रसूल अल्लाह को भेजा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कद मन अल्लाहु अलल मुमिनीना, मन अल्लाहु अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से रसूल भेजा, कोई जिन्नी भेज दिया, कोई फरिश्ता नहीं भेज दिया, इंसानों में से भेजा। तो ये अल्लाह का एहसान है ना। तो मन का लफ्ज मानवी तौर पर भी एहसान के लिए इस्तेमाल होता है और मादी लिहाज से भी। और मन जो है ये किसे कहते हैं, ये एक कुदरती गिजा थी धनिए के बीज जैसी, जो औस की तरह गिरती थी और जमीन पर जम जाती थी। 40 साल तक जब वो मैदान में थे ना, खाने पीने का इंतजाम अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे लिया था। अल्लाह ताला के जन्नत के रेस्टोरेंट से वक्त के ऊपर खुद ही खाना आ जाता था। आज मैं और आप भी, कुछ लोग, एक औरत अमेरिका में रो रही थी, मियाँ कभी बाहर खाना ही नहीं खिलाते और इतना दिल चाहता है बाहर घूमने को। और एक औरत इसलिए रो रही थी, मियाँ को बड़ा घूमने का शौक है, उनके पाँव में तो पहिए लगे हैं, सुकून से नहीं रहने देते, तंग आ गई है जिंदगी, है ना, घर में रहना चाहती हूँ इसलिए रो रही थी। मेरा दिल चाह रहा दोनों को मिलवाया जाए, है ना। तो मुझे तो लगता है कि जिस भी, अगर अल्लाह ने बाहर ले जाने वाला मियाँ दे दिया तो शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, अगर नहीं ले जाने वाला दिया तो भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, जिसमें तेरी रजा नहीं उसमें मेरी रजा नहीं, है ना। जिंदगी के थोड़े से दिन है वो गुजर ही जाएंगे, तो क्यों रोते रहते हैं, क्यों परेशान होते हैं छोटी छोटी बातों पे, है ना। बस अल्लाह की बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यानी हम भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि क्या कैसी ईद है, कुछ खूब खाते हैं, खूब तोहफे लेते हैं, खूब आते जाते हैं, दावतें होती हैं, लेकिन एंड में जब तबसरा करें ईद कैसे गुजरी, क्या आई थी, सारा दिन पकाने में गुजर गया, सारा दिन मेहमान नवाजी में गुजर गया, है ना। तो जब हमें पका पकाया मिलता है ना, जब तक हाथ से खुद धोई नहीं ना मारते और खुद चम्मच नहीं चलाते और हाथ, कहते मजा नहीं आया ना, लज्जत सुकून नहीं आता ना। तो बनी इसराइल के लोगों को जब मनो सलवा मिलता था ना तो उनको सुकून नहीं था, कहने लगे नन नस्बिर अला ताम वाहिद, हमें दे ये, वो आगे पढ़ेंगे आज आप, है ना, आज नहीं इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे उसको। तो ये है इंसानियत का हाल। तो एक था मन और दूसरा है सलवा। सलवा जो है इसका रूट वर्ड है सीन लाम वो, ये खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताम के लिए, और इससे मुराद है ये बटेर, जैसे ये बर्ड नहीं होता उसकी किस्म का एक परिंदा था, अल्लाह के फसल से इसकी इतनी कसरत थी कि जब खाने का वक्त होता था तो ये भुनावा उनके पास आकर गिर जाता था, उस कौम के लिए ना, और जितना उनको उस वक्त के लिए वो खाना चाहिए होता था ना, उतना उनके पास बड़ी कसरत से आ जाता था। तय्यबात, तय्यबात, ये पाकीजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो या बात तय्यब, तय्यब कलमा तय्यबा और कलमा खबीसा। कलमा तय्यबा कौन सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, اور خبیثہ کیا ہے کہ شرک کرنا، اللہ کو ایک نہ ماننا. طیب پاک کو کہتے ہیں، خوشحالی کے لیے آتا ہے، اسی سے لوگ طوبہ نام رکھتے ہیں، طیب نام رکھتے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے، رزق ناکم، یا پڑھی چکی تھی پہلے بھی، اور آگے چلیے آپ، کریا. کریا کا روٹ ہے کافرا، یا یہ بستی کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، بستی میں رہنے والے لوگ. اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں کہ جمع کرنا، جیسے کسی چیز کا جمع ہونا. کرل ماؤ فی الحوض، حوض، حوض نے پانی جمع کیا. تو کریا کو کریا کیوں کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، ایک جگہ پانی ہے وہاں پہ ایک آیا، پھر دو آیا، پھر دس آئے، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے، تو اس کو کریا جو ہے وہ کہا جانے لگا. یعنی خواہ وہ جگہ ہے بستی یا پھر اس میں رہنے والے لوگ، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں، ایک دور کی قوم کو بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے فاکلو، کلو آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ہے نا. تو ایک ہوتا ہے کل اور ایک ہوتا ہے کل، ہے نا. کل کل، کاف لام کل جو ہوتا ہے نا، یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہے کھا. اور قاف لام کل جو ہے یہ بھی ورب ہے، اس کا مطلب ہے کہہ سے، یعنی کوئی بات کہنا. دونوں میں یہ فرق ہے، دونوں قاف، یعنی قاف کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. کل کل، کلو سب کھاؤ، یہ ورب ہے. حیسو حیسو، حیسوما، اینا اینوما، اس طرح کے الفاظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. تو حیسو کا مطلب ہے جہاں، اور حیسوما جب آئے تو جہاں کہیں، اور اینوما آئے تو کہاں، کس جگہ، مطلب ایسے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. شئتم، اس کا روٹ ہے شین یا حمزہ، شئی جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز، شے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی سے جو ہے جیسے کسی چیز کے بارے میں جاننا یا کسی چیز کے بارے میں ایک علم مل جائے، تو شاء، چاہنا، ارادہ کرنا. کوئی چیز ہوتی ہے تو ارادہ بھی کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا روٹ شین الف حمزہ بھی ہے، شین یا حمزہ یا شین الف حمزہ. ہاں، ان شاء اللہ، ماشاء اللہ، یہی اس کا روٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا اور جو اللہ چاہے. اور اسی طرح مشیت، مشیت کا بھی یہی روٹ ہے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے. ادخلو، دخلا ورب ہے، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ. سجدن، سجدہ کرنا، جب ہم اپنی پیشانی، اپنا ماتھا، اپنی ناک زمین پر لگا دیتے ہیں تو وہ سجدے کی حالت ہے، عاجزی کی حالت کو کہتے ہیں سجدہ. خلوص دل سے سجدہ ہو تو سجدے کی کیا کہنے، جہاں میں نے جبیں رکھ دی وہی کعبہ سے رکایا. آگے دیکھیں کولو بھی آ گیا، پھر پہلا کولو اور پھر کولو، دونوں آگے نا، پتا چل گیا آپ کو. حتتن، حتتن، توجہ سے سنیے، اس کا روٹ ہے ہا توا توا، یعنی ہا توئے توئے، اس کے معنی ہے اترنا، نازل ہونا، کوئی چیز جیسے اتر جائے. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کسی چیز کا ریٹ وہ گر جاتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے انحطاط، ہم بولتے ہیں نا. انحطاط، گر جانا، ٹھیک ہے، بھاؤ کا گر جانا، کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا. جیسے گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا، مثلاً کتاب ہے، یہ سر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیچے اتارا تو بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جو گناہ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے ذہن پر بوجھ ہوتے ہیں، ان کا ایک دباؤ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی پر گناہ کا بوجھ ہے اور اس کو اتار دیا جائے. تو گناہوں کو کیسے اتارا جائے گا، کہ جب گناہوں کی معافی مانگی جائے گی تو اللہ پھر ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے. اب دیکھیں، قاتل قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قتل کے سارے جو نشانیاں تھی اس نے مٹا دی، لیکن قتل کا جو بوجھ ہے، جو اس نے گناہ کیا ہے، وہ اس کو جو ہے جو دل کے اندر ہے، وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ خود آ کے اقرار جرم کر لیتا ہے، गुनाहों का बोझ, ये गठरियां हैं जो गुनाहों की मैंने और आपने अपने ऊपर उठा रखी हैं, जो हमें नजर नहीं आती। अगर हम सोचें तो हमें अपने गुनाहों की गठरियां महसूस होंगी, महसूस होंगी। तो हितातुन जो है इसके मानी है गुनाहों की माफी चाहना, गुनाहों की दरख्वास्त करना। और डिक्शनरी के लिहाज से, लुगत के लिहाज से क्या मानी है? उतरना, नाजिल होना, ऊपर से नीचे उतारना। ठीक है, नगफिर लकुम, गफारा। गफारा का मानी है किसी चीज को किसी चीज से छुपा देना। अरबी जबान में एक मुहावरा भी इस्तेमाल होता है कि गफिर अश्शबाब बिल खिजाब, खिजाब नहीं होता, गफिर अश्शबाब बिल खिजाब, कि उसने खिजाब से बालों की सफेदी को छुपा दिया। इसी तरह ये लोग जो जब जंग करने जाते थे तो एक लोहे का लिबास पहनते थे, तो उस मिगफर, मिगफर उसको भी कहते हैं जो खुद पहना जाता है लोहे का। इसी तरह जैसे मैं और आप जो है ये पहनते हैं ना, ये बाज़ुकात स्काफ से नीचे लोग टोपी सी पहनते हैं, बाज़ुकात बालों को छुपाने के लिए भी टोपी पहनी जाती है, तो उसके लिए भी अलगफारा ये जो है इसके लिए भी ये होता है, क्योंकि टोपी बालों को छुपा देती है। ठीक है, तो गफारा का मतलब क्या है कि ढांप लेना, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत हमें ढांप ले, हमें कवर कर ले। तो जब हम अल्लाह से माफी मांगते हैं गुनाहों की, तो अल्लाह अपनी रहमत से हमें जो है वो ढांप लेते हैं, कवर कर लेते हैं। गफारा, मगफिरत, गुनाहों की बख्शिश चाहना। खता याकुम, खता, गलती के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सनजीदू सा, इसके मानी है अनकरीब, जल्दी ही, कभी सौफा लफ्ज आता है कभी सा आता है, तो अनकरीब जल्दी। जीदू, जीदू का रूट वर्ड है जा या दाल, जैद, इसके मानी क्या है? ज्यादा होना, मजीद। मोहसिनीन, हुसन से है,